पृष्ठ संख्या 221, नए पत्ते। नए पत्ते की बहुत सारी कविताओं की संवेदना और भाषिक संरचना की नवीन विशेषताओं के बारे में इस निबंध में प्रकांतर से हम पहले ही विचार कर चुके हैं। वैसे संवेदनागत और भाषा की एकतनता के लिहाज से नए पत्ते निराला के संग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ हर लिहाज से एक रंग और एक जमीन की कविताएं सबसे ज़्यादा मिल जाएंगी। यहाँ आकर निराला की इतिहास की समझ और भारतीय जनसाधारण के बीच की वर्गगत भावना का खुलासा मिलता है। प्रेमचंद की तरह वे अपनी इन कविताओं में वर्ग समन्वय की चेष्टा कभी भी करते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि वे किसान, मजदूर और पिसती हुई निम्न मध्य वर्ग की जनता की पक्षधरता निःसंशय रूप से ग्रहण करते हैं। वह तत्कालीन गांधीवादी राजनीति और कांग्रेस के विचार दर्शन से भी कतई प्रभावित नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि उसकी त्रुटियों और कमजोरियों को बखूबी समझते हैं। उन्हें ब्रिटिश राज, जिसमें कुछ लोगों के अनुसार शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे और गांधी जी के राम राज्य में कोई विशेष फर्क नहीं दिखाई देता, वह अच्छी तरह समझते हैं कि सदियों से पिसते हुए जनसाधारण और भारतीय सर्वहारा वर्ग को उस राम राज्य में भी कुछ नहीं मिलेगा। द्विज संस्कृति द्वारा किए जाने वाले शोषण तथा कुछ थोड़े से मुट्ठी भर लोगों द्वारा अपने फायदे और अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय जनमानस की अजस्र ऊर्जा, पृष्ठ संख्या 222 का शोषण और इस्तेमाल उनकी समझ में खूब आता है। इसीलिए वह अपनी संवेदना का सच्चाई में इन सारी बिगड़हड़ाओं से कविता को मुक्त करके उसके अंदर पिसते हुए भारतीय जनसाधारण को दुख दर्द को अभिव्यक्ति देने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। यही संवेदनागत बदलाव और सच्चाई की एकतनता नए पत्ते संग्रह की कविताओं की विशेषता है। संभवतः इसी एकतनता को ध्यान में रखते हुए निराला ने कुकुरमुत्ता के प्रथम संस्करण के साथ कविताएं भी इसमें शामिल कर ली। लेकिन इस संवेदनागत बदलाव के अलावा नई भाषिक संरचना और छंदमुक्ति के प्रयास में भी यहाँ आकर निराला बिल्कुल सफल हैं। खजोहरा या खून से होली जो खेली, या रामकृष्ण परमहंस और देवी सरस्वती आदि कविताओं में यदि छंद अनुशासन है भी तो वह खटकता नहीं, क्योंकि भाषिक संरचना इतना नई और ताजी हो जाती है और उसका संवेदनागत बदलाव इतना भारी पड़ता है कि छंद अनुशासन तिरोहित सा हो जाता है। वैसे भी ऐसी कविताएं पूरे संग्रह में बहुत कम हैं। शेष कविताएं काव्य आभिजात्य से मुक्ति के सफलतम प्रयास का उदाहरण कही जा सकती हैं। स्फटिकशिला एक नए ढंग का यात्रा वर्णन है। इसकी सपाटता में भी एक व्यंग्य है। प्राचीन कथा और पौराणिक संदर्भ के समकक्ष तत्कालीन स्थितियों को रखकर कवि ने यहाँ बड़े गहरे व्यंग्य की सृष्टि की है। भाषा योजना के मामले में भी इस कविता का नया शब्दबंध दर्शनीय है, लेकिन यहाँ भी निराला की मुख्य चिंता वही भारतीय जनसाधारण है जिसे सदियों से कुछ नहीं मिला। काली एक नारी गाली देती, खाती ढिकली देख कर चबूतरा, मैंने देखा बड़ा मैला मन उसका समाज से, चोट खाई हुई वह राम जी के राज से, शूद्रों को मिली नहीं जिनसे कुछ भी कहीं, ढढास बंधाया मैंने मीठे शब्द कह कह कर, देखती रही वह आंसुओं की आंखों रह रह कर। समाज में जिनका मन अत्यंत मैला है उन्हीं का चित्रण नए पत्ते में बहुतायत से हुआ है। जमींदारों, राजाओं, विदेशी साम्राज्यवादियों के कारकुनों द्वारा साधारण जनता का भयंकर शोषण और उत्पात की अनेक मार्मिक कविताएं इसमें संग्रहित हैं। उनकी शक्ति, उनकी असहायता, उनकी समझ का भोलापन अभी भी वैसे का वैसे बरकरार है। पृष्ठ संख्या 223। नई पनपती हुई पूंजीवादी व्यवस्था किस तरह ग्रामीण समाज को धीरे धीरे खोखला कर रही है, इसके सजीव चित्र इन कविताओं में पाए जाते हैं। लेकिन इन चित्रों के तथ्यात्मक कथन से कविता नहीं बनाई गई है, बल्कि इसकी जगह निराला ने छोटी छोटी दैनंदिन घटनाओं से निहायत नगण्य से दिखने वाले किस्से उठाए हैं और उनके माध्यम से समूची समाज व्यवस्था पर गहरा आघात किया है। जमींदार का सिपाही अपना लोहबंद गाड़कर हर जगह खड़ा है। दरवाजे पर उसके गोले से गढ़ा हो जाता है। किसानों के सिर ढाल की तरह अपने बचाव में नीचे झुके हैं। कोई साथ नहीं देने आता, वीर जवाहरलाल कभी नहीं आते, वह सिर्फ वादा कर गए हैं और जनता मुंह बाए खड़ी है। आदमी जैसे कमान बन जाता है किसान, सामाजिक और राजनीतिक सहारे कुल छुटकर भाग जाते हैं। साथ देने की जगह कभी डिप्टी साहब आते हैं और उनका गुड़ाई 20 शेर दूध भरवा कर ले जाता है। कभी थानेदार आकर चंदा लगा जाता है। कभी यदि गांधीवादी खद्दरधारी आकर कुछ समझा कभी यदि गांधीवादी खद्दरधारी आकर कुछ समझा जाते हैं तो बाद में जमींदार का गुड़ाई दुनाली से उन्हें भून देता है। चारों तरफ के इस शोषण और अनाचार के बीच कमान बनकर किसान जिंदा है। वह घड़े में दूध भी भरता है, चंदा भी देता है, अपना दुख दर्द कहकर बेकार भी कर देता है और गालियां तथा गोलियां भी सहज ढंग से खाता रहता है। और तो और गुड़ैत भी जैसे अपने ज्ञान का रोब उस पर गांठता है। अहिर के मूसर ये दही के दूसर हैं। इनसे एक घाट में भेड़ और भेड़िए बिना वैर भाव के पानी पी रहे हैं। इनके साथ अफसरान हैं जैसे दरोगा जी, 20 शेर दूध दोनों घड़ों में जल्द भर। ऐसे में प्रतापगढ़ के गांव में किसानों के बीच दौरा करने वाले उनकी समस्याओं को समझने और इस अत्याचार और शोषण के खिलाफ एक जनमत तैयार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस तरह आते हैं उसका बड़े ही कटु व्यंग के साथ निराला ने चित्रण किया है। यद्यपि कविता में कहीं प्रतापगढ़ नहीं है, वह हिंदुस्तान के किसी भी गांव में नेहरू के जाने का चित्र हो सकता है। इन परिस्थितियों में जनता पृष्ठ संख्या 224 क्या करे? क्या अभी भी किसी मसीहा का इंतजार करना चाहिए? क्या पट्टा भी के इतिहास में चित्र जवाहरलाल सचमुच जनता की नज़र में मसीहा है? जनता की वास्तविक आंतरिक मना स्थिति क्या है? हजारों साल से धोखा खाती हुई वह अब हर चीज को शक की निगाह से देखने लगी है। उन सारे लोगों पर यकीन करना अब उसके लिए मुश्किल हो गया है जो उसे आकर झूठा दिलासा दे चले जाते हैं, जो अपनी अस्तित्व रक्षा में उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उसे किले और फौजों में बदल कर खुश कर लेते हैं, जो अपनी आवाज अपने शब्दों की जादूगरी में सम्मोहित करके उसे अपने ही रक्त में खुशी खुशी डुबकियां लगाने के लिए राजी कर लेते हैं। शायद जैसे डिप्टी साहब आते हैं, जमींदार का कारिंदा आता है, गुड़ैत कारकुन दरोगा आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसी तरह तो नहीं आते। उनके आजू बाजू में वह कौन है? कोई सेठ, कोई विदेशी पत्रकार, कोई राजा, रियासतदार, कोई जमींदार? ये लोग कौन हैं जिन लोगों को अपने आजू बाजू लेकर पंडित जी बैठे हैं? वे लोग अपनी सारी खूंखारियत, अपने द्वारा किए जाने वाले सारे अत्याचार और शोषण छोड़कर क्या सचमुच जनता के सेवक बन गए हैं? आखिर यह माजरा क्या है? इसे मांगू भी सोचता है और लुंकुआ भी। आजकल पंडित जी देश में विराजते हैं, कुईरीपुर गांव में व्याख्यान देने को आए हैं मोटर पर, लंदन के ग्रेजुएट MA बैरिस्टर, बड़े बाप के बेटे। बीसियों की परतों के अंदर खुले हुए एक एक परत, बड़े बड़े विलायती लोग, देश की बड़ी बड़ी थातियां लिए हुए, राज्यों के बाजू पकड़, बाप की वकालत से कुर्सी रखने वाले, अनुलंघ्य विद्या से देसी जनों के बीच, लेड़ी जमींदारों की आंखों तले रखे हुए, मिलों के मुनाफे खाने वालों के अभिन्न मित्र, देश के किसानों और मजदूरों के भी अपने सगे, विलायती राष्ट्र से समझौते के लिए। पृष्ठ संख्या 225, गले का चढ़ाव बुर्जुआजी का नहीं गया, आंख पर वही पानी, स्वर पर वही संवार। यह है गांधी जी के उत्तराधिकारी जवाहरलाल का वास्तविक रूप और आभ्यंतर चरित्र। बीसियों परतों के अंदर भी खुले हुए जमींदारों, महाजनों, अंग्रेजों, राजाओं, मिल मालिकों के साथ ही अपने को किसानों और मजदूरों का भी अभिन्न मित्र कहने वाले महात्मा गांधी के उत्तराधिकार जवाहरलाल नेहरू का चित्र। यही महात्मा गांधी द्वारा समर्थित वह वर्ग समन्वय है जहाँ घनश्याम दास, बिड़ला और लुकुआ तथा महगू एक ही झंडे के नीचे एकत्र होते हैं। प्रेमचंद भी अपने रचनाकाल के अंतिम दिनों में समझ गए थे कि गांधी जी द्वारा समर्थित इस वर्ग समन्वय का भारतीय सामाजिक ढांचे में कोई आधार नहीं है। कोई भी राजनीतिक या सामाजिक विचार आकाश बेली की तरह नहीं फैलता, उसके लिए जनता का उर्वरक चाहिए। इसीलिए प्रेमचंद की सामाजिक दृष्टि गांधी जी की अपेक्षा अधिक दूरदर्शी है। इसी तरह निराला भी गांधी जी के इस चमकते हुए उत्तराधिकारी के संवारे हुए स्वर में विश्वास नहीं करते। कुइरीपुर गांव, धोबी, तेली, बढ़ई, चमार, पासी, बेहना, डोम, कुम्हार, महाब्राह्मण, गरज की सदियों से दबाया सताया गया वह वास्तविक भारतीय समाज ऊर्जा और शक्ति का अनंत स्रोत और पंडित जी भाषण देने आए हैं इन देसी लोगों के बीच मोटर पर। देसी कुछ भी नहीं, न डिग्री, न समझ, न विचार, न खान पान, न रहन सहन, न दिल, न स्वर, न भाषा, न व्यवहार। गले में वही बुर्जुआपंथी अकड़, व्यवहार में वही दूरी। ऐसे नेता, ऐसे मसीहा पर महंगू और लुकुआ कैसे विश्वास करें? उनका शक सच्चा है, और चाहे वह जितने भी भोले, अनपढ़, गंवार क्यों न हो, उनकी निश्चल पारदर्शी नज़र असलियत को पकड़ने में कहीं नहीं चूकती। इसमें लुकुआ जैसे भी लोग हैं जो इस हिप्पोक्रेसी से भयाक्रांत हो अचानक पूछने लगते हैं कि हम कहाँ जाएं। जमींदार, गुलाइत, दरोगा, सेठ, पठान, अंग्रेज, इनके सर पर जब पंडित जी का भी हाथ है तो फिर यह सवाल उठाना लाजमी है। जनता मंत्रमुग्ध तो हुई भाषण सुनकर, लेकिन आजू बाजू बैठे लोगों को देखकर सकते और शक में आ गई। क्या यह वही राजे के समाज का जादू तो नहीं है? क्या यह उसी राजे की और जरा लकदक रूप में पुनरावृत्ति नहीं है? है तो इसलिए यहाँ धोखा है, इस्तेमाल की प्रवृत्ति है, लेकिन लकुआ भले डर जाए और अपनी नियति का सवाल उठाए, इसी समाज में भांगो जैसे लोग भी हैं जो अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति से परिचित हो चुके हैं। वह पंडित फंडित जी के झांसे में नहीं आने के, वह अपनी कीमत बखूबी समझ चुके हैं।